તારીખ 15/7/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 320 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 59.
ભગવાન આત્મા કા અસલી સ્વરૂપ હૈ જો સિદ્ધાંત કા વિષય હૈ ज्ञान में जो अनुभव करने लायक है, इसलिए निश्चय ज्ञान का भी जो विषय है और जिसमें लीन होना योग्य है और इस परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के विषय में इतनी बात कह करके आचार्य महाराज इस प्रधान के विषयभूत आत्मा का और स्वरूप भावना पूर्वक विवरण करते हैं। सिर्फ स्वरूप ऐसा है उतनी ही इसमें बात नहीं है, लेकिन ये स्वयं की भावना का विषय है, दृष्टि का विषय है। निश्चय नहीं का मैंने निश्चय ज्ञान का विषय है। इस प्रकार सिद्धांत में कहा है, इस ही प्रकार सिद्धांत में कहा है कि निष्क्रिय शुद्ध परिणामी कह, कि परिणामी भाव की परिभाषा पर्याय रहित निष्क्रिय जिसमें क्रिया नहीं, जिसमें परिणाम की क्रिया नहीं, ऐसे भाव को यहाँ निष्क्रिय परिणामिक कहने में आया है। त्रिकाल जिसमें, तीनों काल में जिसमें परिणाम की क्रिया नहीं पाई जाती, उसको निष्क्रिय परिणामिक कहते हैं। निष्क्रिय का भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ भी है, इसलिए यहां खुद प्रश्न उठाएंगे आचार्य महाराज कि निष्क्रिय का क्या अर्थ है, ऐसा क्या पूछेंगे। क्यों कि जो कोई काम नहीं करता है, काम करने के लिए जो तैयार नहीं होता है, तो कहते हैं कि वो आदमी निष्क्रिय हो गया है, कुछ करता ही नहीं। उसको काम करने में कोई दिल लगता नहीं है, निष्क्रिय हो गया। और ऐसे देखो तो एक भी पदार्थ दूसरा पदार्थ का काम करने के लिए स्वरूप से ही निष्क्रिय है, कर ही नहीं सकता, इसलिए निष्क्रिय है। और स्वभाव दृष्टि से देखो तो स्वभाव द्वारा राग को नहीं कर सकते, स्वभाव द्वारा राग को कर सकते नहीं, इसलिए स्वभाव राग करने के लिए निष्क्रिय। और पारिणामिक भाव एक समय की पर्याय करने के लिए निष्क्रिय है, कर नहीं सकता, ऐसे प्रकरणवश निष्क्रिय शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ चला है आगम में। यहां शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है ऐसा कहा तो निष्क्रिय का क्या अर्थ है, ऐसा खुद आचार्य महाराज ने स्पष्टीकरण देने के हेतु प्रश्न उठाया कि निष्क्रिय इति को अर्थ है। संस्कृत जो आगे लिखा है, आगे के पेज से लिखने को मिलेगा, सतासी तथा च उक्तम सिद्धांते निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय इति को अर्थ, ऐसा पूछा, क्या निष्क्रिय इति को अर्थ, उसका क्या अर्थ होता है, निष्क्रिय माने क्या। उत्तर देते हैं आचार्य महाराज कि जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह बंध का कारणभूत जो क्रिया रागादि परिणति है, रागादि परिणति क्या है कि बंध के कारणभूत है, जो राग होवे और बंध नहीं होवे ऐसा कभी बने नहीं, इसलिए बंध के कारण नहीं कही, बंध के कारणभूत है ऐसा कहा। सॉलिड टोन देना है उसमें, क्या जो टोन है उसमें एकदम वजन देना है कि राग होवे और कर्म बंध नहीं होवे ऐसा बनता नहीं, क्योंकि जो बंध के कारण भूत ऐसी जो क्रिया है अर्थात रागादि परिणति है, उस रूप ऐसी क्रिया रूप जो नहीं है या ऐसी क्रिया रूप जो नहीं होता है, नहीं है मतलब क्या है कि जो नहीं होता है और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया शुद्ध भावना परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का कारण बताया आगे, जिसके बिना मोक्ष हो सकता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में भी होता है, लेकिन वो मंद रूप होता है, भीतर के परिणाम होते हैं जो बाहर दिखने में नहीं आते, लेकिन जो परिणाम तीव्र हो जाए उसका दिखावा बार में हुए बिना रहता नहीं। तो मुनिराज को छठे सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम बहुत उग्र हो जाते हैं, और उग्र हो जाने से उसकी शुद्धता उसकी वितरागता बाहर प्रदर्शित हो जाती है। उस प्रदर्शन होने से राग की क्रिया और राग नहीं दिखने में आते, क्योंकि उसका अभाव हो जाता है, तो लोग भी समझ सकते हैं कि वो वितरागी महात्मा है। जैसे श्वेतांबर लोग लेते हैं के गृहस्थी में भी भाव में उत्कृष्टता होगी और केवल ज्ञान हो गया ऐसा बनता है, भाव में उग्रता आने आने से द्रव्य रागादि की क्रिया रह सकती नहीं या हो सकती नहीं है। अगर बाहर में राग पूर्वक की क्रिया होवे और उग्र वितरागता होवे ऐसा बनता नहीं। जैसे कि आहार लेने का राग है तो अरिहंत भगवान को आहार लेने का होता है कि नहीं होता है, मान्यता दो है, श्वेतांबर मान्यता में ये कहेंगे कि हाँ भगवान को भी भूख लगती है और वो भी आहार लेने को जाते हैं। वो तो पात्रादि मानते हैं तो अपने पात्रा में आहार लेते हैं। दिगंबर के आगम ये कहते हैं कि भगवान को आहार नहीं होता। अब देखिए कि अभी तो भगवान अर्यंत विद्यमान नहीं है, हमारे समय में वर्तमान में तो अर्यंत भगवान विद्यमान नहीं है, और दोनों अपने अपने आगम को जैनागम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी जिनागम कहेंगे, ये भी जिनागम कहेंगे, हमें क्या मानना। तो न्याय यह कहता है, कल घर पे थोड़ी चर्चा ही चली थी, न्याय यह कहता है कि जिसको वीतरागता की उग्रता आ जाए, उसको राग और राग की क्रिया वाला कोई शारीरिक परिणाम देखने में नहीं आवे। मंद होवे, मन में होवे, तो बाहर में थोड़ा राग होता है तो राग की क्रिया भी हो जाती है, लेकिन भगवान तो संपूर्ण वितराग हो गए। हम एक थोड़ा सा अनुभव से उसका विचार कर सकते हैं कि हम थोड़ा रोटी वगैरह का टुकड़ा या चावल वगैरह मुंह में डालते हैं, क्या बिना राग चबा सकते हैं? थाली में से या पात्रा में से उठा करके मुंह में बिना राग रख सकते हैं? बिना राग चबा सकते हैं? बिना विकल्प, बिना इच्छा गला के नीचे उतार सकते हैं? हमारे अनुभव को देखें तो पता चल जाएगा कि ये राग बिना शरीर की क्रिया भी निमित्त नैमित्तिक रूप से बन सकती नहीं है। राग शरीर की क्रिया करता नहीं है, लेकिन कितनी शरीर की ऐसी क्रिया है कि जो बिना राग उसका सद्भाव नहीं हो सकता, वो क्रिया राग के सद्भाव को सूचित करती है। तो इसलिए जो वितराग होते हैं उसको राग की क्रिया वाला स्वीकार करने से उसको रागी हमने माना। जो दोष जिसमें नहीं है उस पर उसमें भी ऐसा दोष लगाना, मानना, ये झूठा दोषारोपण है, जिसको शास्त्र परिभाषा में अवर्णवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देव का अवर्णवाद है। सर्वज्ञ वितराग देव अढ़ार दोष रहित होते हैं, उसमें से एक भी दोष मानना वो सर्वज्ञ देव का अवर्णवाद है। गुरुपद में भी जो दोष नहीं होता निग्रंथ गुरु में, साधु में, उसमें ऐसा दोष स्वीकार करना वो गुरु का अवर्णवाद है। और जो वितरागी सिद्धांत है और वितरागता से धर्म और मोक्ष होता है, ऐसे नहीं स्वीकार करके राग से भी कुछ धर्म या कल्याण होता है, ये शास्त्र का अवर्णवाद है, सिद्धांत का अवर्णवाद है। सिद्धांत में हेरफेर करना या गलत सिद्धांत को प्रतिपादन करना या प्रतिपादन करते हुए को स्वीकारना, अनुमोदन करना, ये शास्त्र का सिद्धांत का अवर्णवाद है। उससे तीव्र मिथ्यात्व होता है जिसका फल निगोध होता है। क्या? जिसका फल निगोध होता है। क्यों? कि जो परम सत्य है जो भगवान के घर की चीज है, जिनेंद्र देव के घर की चीज है, उसमें हमने मिलावट कर दी। क्या कर दिया? और जगह मिलावट करता तो चलता, दूध में घी में मिलावट करते या कोई भी खाने की चीज में मिलावट करते तो उतनी सजा नहीं होती जितनी सिद्धांत में मिलावट करने से सजा होती है। चोरी करने वाला चोर किसी भी आम समाज में कहीं किसी का घर की चोरी भी करे और राजा के महल में जा करके चोरी करे, क्या दोनों की सजा एक होती है? चोरी में सामान्य मनुष्य के घर में चोरी होवे और वही चोर राजा के घर में उसकी तिजोरी में चोरी कर जावे, दोनों की एक सजा कभी नहीं होती। सजा करने वाला राजा यही कहेगा कि ये तेरी कैसी हिम्मत, तूने इतनी हिम्मत क्यों किया? ऐसे हम दूसरों का अवर्णवाद करें और देवगुरु शास्त्र का अवर्णवाद करें, दोनों अपराध एक दर्जे का नहीं है, दोनों अपराध एक दर्जे का नहीं है। एक आदमी दूसरा आदमी को गाली देवे और भगवान को और श्री गुरु को गाली देवे, एक दर्जे का अपराध नहीं होता, ऐसी बात है, बहुत फर्क है। एक ऐसा बना था गुरुदेव, वो बात को खास कहते थे, भावनगर के महाराजा थे, भाव सिंह जी के पिता तख्त सिंह जी थे, भावनगर जिसने बताया उसके पिता थे तख्त सिंह जी। तो एक चोर रात्रि को उसको उसके बेडरूम में आ गया चोरी करने के लिए, और जो तख्त सिंह जी हैं नींद उसकी उड़ गई, कोई आवाज होने से तो जग गया। जग गया तो उसने देखा कि कोई आदमी और कोई हमारे बेडरूम में दूसरा आदमी आ गया है। सीधा ही उसने तलवार उठाई, क्या उनके तो दीवार पर भी तलवार लटकती है ना, उस वक्त तो पुलिस को बुलाने को नहीं जाएगा, सीधा अपने खुद ने ही तलवार उठाई। कौन है तुम? बोला वो तो फिर तो वो तो चोर है, वो तो फिर तो पकड़ा गया तो फिर तो उसका तो हिम्मत तो खत्म हो गया, आज जोड़ में महाराज मैं चोरी करने को आया, तुमने इतना हिम्मत किया? क्या? बोले मार डालूंगा तुम। सीधा वो ऐसा नहीं समझे कि जो चोरी करने वाले को क्या सजाए मौत हो सकती है क्या? चोरी करने वाले को मौत की सजा नहीं होती, लेकिन राजा के घर में चोरी करने को आवे तो राजा उसको मार देता है। ऐसे सिद्धांत में या भगवान के स्वरूप में या देव के स्वरूप में या सिद्धांत के स्वरूप में गड़बड़ी करना, इसकी सजा बहुत होती है, बहुत इसकी सजा होती है, ये मामूली सजा नहीं होती, बहुत बड़ा अपराध है ये, ऐसा कहने का गुरुदेव का अभिप्राय था। एक बात छोटी सी लगती है, इसको एलोबरेट करें तो पता चले कि ये क्या बात है। ऐसी बात है, अरे तुमने भगवान के घर में डाका डाला क्या? और जगह डकैती करता तो चल सकता है, लेकिन भगवान के घर में डाका डालते हो तुम, भी कोई बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं, ऐसी बात है। ठीक बात है। देखो ऐसे जीव भी मंद कसाई दिखते हैं क्या, वो भी जिन मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, भले ही पढ़ते पढ़ते शास्त्र का वर्णवाद करते, सिद्धांत का वर्णवाद करते हो, पंच परमेष्ठी का नमस्कार कर बोलते हैं, या नए नए मंदिर की प्रतिष्ठा भी करते हैं, करवाते हैं, दान देते हैं उसमें, लेकिन भगवान के घर में डाका डाला है, मामूली सजा नहीं। ये बात इतनी गंभीर है, मतलब माने तो क्या, इसको भी साधु माने, उसको भी साधु माने, इसके भी मंदिर में जावे, इसके भी मंदिर में जावे, ऐसा कि मामूली अपराध वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध होता है। भगवानी वाणी और ज्ञानी की वाणी में क्या फर्क है? फर्क है क्या? दोनों में फर्क होता है क्या? भगवान की वाणी भी जिन वाणी है और ज्ञानी की वाणी भी जिन वाणी है। मुमुक्षु तरीके कर्तव्य है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सके हैं? फिर आपके घर में कोई चोरी करने को आवे तब तटस्थ रहना, उस वक्त भी तटस्थ रहना। हाँ तटस्थ तो कब रहेंगे, हमारे घर में आवे तब तो हम बर्दाश्त नहीं करें। इसका मतलब जिसका जितना ममत्व हमको हमारे संयोग प्रति है, उतना ममत्व हमें सिद्धांत के प्रति नहीं है, भगवान के मार्ग की भक्ति नहीं है, मार्ग भक्ति इसको कहते हैं, मार्ग की भक्ति नहीं है, नहीं हुए हो ही है ही नहीं। ये प्रशस्त द्वेष है, क्या है, क्या है वो, जिसको प्रशस्त राग सही होता है उसको प्रशस्त द्वेष भी सही होता है, होता ही है, और जिसको प्रशस्त द्वेष के प्रसंग में प्रशस्त द्वेष नहीं होता है उसको सच्चा प्रशस्त राग होता ही नहीं है, जो भी है झूठा है खोटा है, उसका प्रशस्त राग भी सच्चा नहीं है, धर्म तो आई नहीं, प्रशस्त राग भी उसका सच्चा नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि ये एक सिक्का के दो बाजू है, सिक्का एक बाजू वाला कभी मिलता नहीं है, उसका दो बाजू होती ही है, जुड़ी हुई है वो, तो ऐसी परिस्थिति एक होती है। ये गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कहते थे इस बात को कि साहब इसका कोई, वो तो कहते भगवान प्रभु ऐसा करके बोलते आचार्य महाराज को कि प्रभु उतना इतना ही दोष तो किया क्या, बहुत मामूली दोष किया है, ये ककड़ी के चोर को मौत की सजा क्यों करते हो? क्या कहते थे गुरुदेव कि काकड़ी ना चोर ने मौत नहीं सजा आपको तो आते कहे न्याय से आपनो। गुरुदेव कहते कि ककड़ी का चोर नहीं है, वो राजा के घर में डाका डालने वाला है, ये भगवान के घर में डाका डाला है, ऐसा कहते थे। और वहां तो दृष्टांत को क्या था कि कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है कि वस्त्र का एक धागा रखने का शुरू किया, जो भगवान का शासन चलता था उसमें श्वेतांबर चालू हुए तो वस्त्र का एक धागा भी रख करके जो मुनि है ऐसा कहेगा गोदम गच्छेदी, वो अष्टपाहुर में गाथा लिखी है कुंदकुंदाचार्य देव ने। तो क्या कुंदकुंदाचार्य देव को तीव्र कषाय हो गया क्या कि नहीं ये वस्तु की स्थिति बता रहे हैं, तो बहुत बड़ा अपराध है, वो मार्ग को बदलना चाहते हैं, सिद्धांत को बदलना चाहते हैं, ये सारे जैन शासन का खून करना चाहते हैं, हमारा घर कोई नीम में से उखाड़ दे तो कहां से, हम तो एक खिली भी ठोकने नहीं देंगे, हमारा बंगला पे कोई खिला खिली लगाने आएंगे और थोड़ा ये हो जाएगा वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन नीम में से कोई उखाड़े तो कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? तो ये तो शासन को नीम में से उखाड़ने की बात हो जाती है, इसलिए वो किसी कीमत पे भी बर्दाश्त किया जाता है नहीं है, ऐसी बात है। हाँ यही बात है, ये बात है, अनुमोदन हो जाता है उसका, वहां निषेध नहीं होता, उसको भगवान गुप्त अनुमोदन कहते हैं। क्या तो उसको शाबाशी नहीं देने जाएगा, नहीं नहीं तुम ठीक करते हो तुम ठीक, ऐसा नहीं कहेगा, मौन रह जाएगा, ये गुप्त अनुमोदन है, ये गुप्त अनुमोदन है और ये सरलता का प्रकार है, सरलता का प्रकार, सरलता में एक बोल लिया है गुप्त अनुमोदन का कि जो जीव अपने दोष को निष्पक्ष होकर के देखता है उसका दोष का गुप्त अनुमोदन का अभाव हो जाता है, ऐसा एक बोल लिया है। तभी थोड़ा घर पे चला ना चर्चा, तो गुप्त अनुमोदन क्या होता है कि हमारा दोष का हमें निषेध ही आना चाहिए, इसका नाम तटस्थता है। क्या दोष का निषेध आवे तो हम निष्पक्ष है, चाहे हमारा हो या चाहे किसी का भी हो, दोष को निषेध करने योग्य है। अगर निषेध नहीं आता है तो ये उसका गुप्त अनुमोदन हो गया, वो दोष कभी मिटेगा नहीं। दूसरे का दोष का तो नहीं भी आवे, लेकिन अपना दोष का तो आना ही चाहिए। क्या दूसरे का दोष वो थोड़ा अपना दोष से हल्का है, क्योंकि इसमें अपना नुकसान सीधा नहीं है, अपना दोष में तो अपना नुकसान है ना, उसका तो आना ही नहीं आना, वो तो सवाल ही नहीं रहता। हाँ वो तो कुछ वाद विवाद की बात हो तो, लेकिन वाद विवाद करने को नहीं जावे, लेकिन जो सत्य है उसको सत्य कहे, असत्य है उसको असत्य कहे, वाद विवाद में नहीं जाना लेकिन सत्य असत्य को भी नहीं समझना, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मंडन खंडन में नहीं जाना लेकिन सत्य सत्य का विवेक नहीं करना, ऐसी बात थोड़ी है क्या?
जो करता है
आपका कार्य करते हो, लेकिन राग क्या करता है आपका? जब तक छद्मस्त है तो उसका राग क्या करता है? कुंदकुंदाचार्य देव छठे सातवें गुणस्थान में सिर्फ स्वंजलन का राग था, तीन चौकड़ी का कसाई का तो अभाव था, तो भी उसमें ये विकल्प आया क्या कि मार्ग टूटता है? क्या मार्ग टूटता है तो बर्दाश्त नहीं किया, पुस्तक बनाया, ग्रंथ रचा अष्टपावड़, क्योंकि राग अपने स्थान में काम करे बिना रह ही नहीं सकता। हम अपना काम करके बीतराग हो जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं समझे, हमारा कोई नुकसान करने को आवे, हमारा धंधा कोई बंद कर देवे बाजार में कि तुम्हारी दुकान बंद करो, तुम बर्दाश्त करते क्या? कोई हमारा धंधा बंद कर देवे तो हम बर्दाश्त करते क्या? निर्बल होवे तो भी पुलिस में जाता है, मदद लेने को जाता है कि नहीं है? झंझट कुछ भी होता है, जाता है कि नहीं जाता है वहाँ? क्या झंझट होकर के नहीं जाता है? निर्बल है तो जाता है, निर्बल होते जाता है वो, उतनी झंझट तो कर लेता है वो, झंझट करे बिना रहता नहीं है, रोने लगता है उतनी झंझट करता है, निर्बल हो तो क्या करता है? रोने लगता है, रोने की झंझट तो करता है कि नहीं करता है? कि वो भी नहीं करता है क्या? हैं? तो इधर तुम रोते हो क्या निर्बल होकर के? अरे रे हमारा हमारा मार्ग टूट जाता है, ऐसा रोना आता है क्या? इस घर में हो करके निर्बल हो करके रोते हो क्या? रोना लगे, रोने लगे, हाँ तो रोने तो लगे जाने, फिर रोए तो सही, तो रोता भी नहीं है इधर तो। उसका निषेध आए बिना रहेगा नहीं, ये गुरुदेव की आज्ञा है। परमागम सार 723 नंबर का वचनामृत पढ़ लेना प्रभु भाई। क्या परमागम सार 723 नंबर का वचनामृत गुरुदेव की आज्ञा को पढ़ लेना, सुनिए अभी जरा कान खोल करके। क्या धर्मी जीव या मुमुक्षु जीव पात्र जीव वाणी का योग होवे, पुण्य का योग होवे तो वाद विवाद करें क्या? नहीं करें ऐसी बात नहीं लिया गुरुदेव ने। वाद विवाद करके सत्य का स्थापन करे, असत्य का उत्थापन करें, धर्मी भी करे है? वो हम है?
अपना वर्तमान भूमिका की बात तो चल रही है, हमको ही दिया है दूसरे को तो नहीं। वो तो ऐसा है कि दूसरे के बारे में क्या, हमको तो दूसरी गुरु के वचन पर चलना है। जब हमें में हमारे में शक्ति नहीं है तो जो श्री गुरु कहता है उसको अनुसरण तो कर सकते हैं, अनुसरण नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, उतना करें हम, श्री गुरु का अनुसरण करें हम, जो कहते हैं वैसा करें। तो सत्य का उत्थापन और सत्य का स्थापन करें। अगर पुण्य का उदय न हो तो, जैसा वो भाई कह भी बात आई, ये निर्बल होवे तो, अंतर में असत्य का नकार, निषेध और तल्लाक आवे ही। तल्लाक शब्द लिया, उर्दू शब्द लिया है, जोर से निषेध। ऐसा नहीं होना, ऐसा किन काल में नहीं होना चाहिए, ऐसा है। नहीं, निषेध नहीं आवे तो गुप्त अनुमोदना होती है। समझा? समझे नहीं आप? हाँ, निषेध नहीं आए तो होगी तो नहीं हुई। अंतर में निषेध हो तो अनुमोदना नहीं हुई। आप सुना नहीं पूरा, पीछे से आए ना तो पूरा नहीं सुना, इसलिए तो फिर से दोबारा सुनो कि अंतर में आते तो अनुमोदना नहीं हुई। क्या? तो अनुमोदना, लेकिन अंतर में नहीं आवे तो अनुमोदना, गुप्त अनुमोदना हो जाती है। ऐसी बात है, गुप्त मैंने क्या, हमको पता नहीं चले, ये अनुमोदना हमने कर ली है इसका हमको पता नहीं चला, इसका नाम गुप्त अनुमोदना है। दूसरे से गुप्त नहीं, अपने से भी गुप्त हो गई है। ऐसा तो एक सरलता का भी घर चर्चा चलती थी। हम आए ना इसके पहले, घर पे चर्चा चली थी कि हमारा दोष निष्पक्षपात का से हमें देखना चाहिए और हमारा दोष का हमें निषेध आना चाहिए। अगर हमारा दोष को हमको ख्याल तो आया कि हमारा दोष है, फिर भी उसका निषेध नहीं आया तो हमारी अनुमोदना होगी हमारा दोष पर, ये दोष को भी निकलने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं। वो बात चल रही थी आप जब आए नहीं, तो वो बात चल रही थी। वहां शांति रख लेना, क्या हम उनको निषेध करेंगे, नकार करेंगे, तल्लाक देंगे तो अशांति हो जाएगी? ऐसा नहीं कि वहां शांति रखने वाला या मिथ्या मध्यस्थ भाव रखने वाला, क्या तटस्थ की बात उनकी आई, मिथ्या मध्यस्था है वो, ऐसा रखने वाला मिथ्या दृष्टि है और ये झूठा काम करने वाला है, गलत दृष्टि वाला है, ये सही बात नहीं, सही दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि भी वहां शांत रहकर बैठ सकता नहीं, क्या सम्यक दृष्टि भी वहां शांत रहकर बैठ सकता नहीं है, है? नहीं, ऐसा नहीं है। बैठा किसको बैठाने का बात नहीं है, अपना उसको निषेध करना, अपने उसको विरोध करना कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तुम मानो नहीं मानो तुम्हारे जानो, लेकिन हमारा अभिप्राय हम प्रसिद्ध करे बिना रह सकते रहते नहीं है। एक और बहुत कड़क दृष्टांत दे दिया है, ठीक है। यहाँ तो एक दृष्टांत वो बात जाने दो, छोड़ो इस बात को। अब गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, क्या देते हैं, बहुत प्रैक्टिकल दृष्टांत दिया है कि अपनी माता पर आड़ देते हैं कोई, क्या कि तेरी माँ ऐसी है ना फैसी है, हाँ क्या सुपुत्र वो शांति से सुनता है क्या क्या दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, तो ये जिनवाणी तेरी माता है, क्या है वो तो शरीर को जन्म देने वाली थी, ये तेरे आत्मा को जन्म देने वाली है हाँ सुनता है ना कोई, कोई नहीं सुनेगा, नस में पानी होता है वो सुनता है, खून होने वाला नहीं सुनता है, खून तो गर्म होता है, उसका स्वभाव भी गर्म होता है क्या तो कोई नहीं सुनेगा, कोई शांति से नहीं सुनेगा, तत्व से विरुद्ध कथन होवे वहां धर्मी उसको सहन करता नहीं, धर्मी उसको या जिसको धर्मी होना हो वो भी उसको सहन करता नहीं, ये आज्ञा है गुरुदेव की। सत्ता स्वरूप जे भाग सिंह जी छाजे मूल विष्णु थे, बाद में सम्यक ज्ञानी हुआ, सत्ता स्वरूप नाम का शास्त्र लिखा, इस पर गुरुदेव ने प्रवचन किया, उसमें से ये लिया है, ऐसी बात है। बहुत कड़क आदमी थे वो बोलने में लिखने में, भागसिंह जी छाजेड़ वो लिखा है कि तुम अपना मकान बनाते हो, बेटा बेटी की शादी करते हो, क्या फंडफावा करते हो, हाँ फंडफावा करते हो, ए मेरे बेटे का लगन है, कोई तुमको 50 रुपया तुम लिखाओ, ये 501 रुपया तुम लिखाओ, 1000 रुपया तुम दो, है अगर ऐसा करेगा तो क्या मानेगा कि ये तो भिखमंगा आदमी है, भीख मांगता है घर घर पे, और भगवान का मंदिर बनाना हो, प्रतिष्ठा करनी हो, तो भाई क्या करे, फंड फाला हो गए तो काम होगा, वरना होगा, ऐसी बात है। ऐसा जमाना था, इस जमाने में श्रीमंत लोग अपने ओर से मंदिर बना दे रहे समाज को, उस पर अपना अधिकार नहीं रखते, और पंचायत को बुला कर कहे कि ये जो इस मंदिर में चढ़ने की सीढ़ी है वो आपको बनानी है, मंदिर में चढ़ने की जो सीढ़ी है 4-5 वो आपको बनानी है, 4 पगथिया आप बना लो, मंदिर आपका हो गया। अच्छा बहुत बातें खुली, हजारों बातें खुली है, कहीं भी भूला नहीं पड़े मुमुक्ष गुरुदेव की बातें को लक्ष्य रख करके आत्महित का समझे तो कहीं भी भूला नहीं पड़े, किसी भी प्रसंग में भूला नहीं पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं भूला पड़ जाएगा, कोई शांति के बाने से, कोई मध्यस्थता के बाने से, कोई निर्बलता के बाने से, कोई कैसे बाने से, कोई कैसे बाने से, ऐसा हो जाएगा। तो वैद थे बड़े, सदगुरु वैद सुजान, वो तो हाथ में नस आते ही कहेंगे कि तुमने 15 दिन पहले मिठाई खाई है, फलानी फलानी मिठाई खाई है क्या। हमारे घर में एक ऐसा केस बना था, हमारे ताऊ जी के लड़के थे, उसको टाइफाइड हो गया, फिर एक वैद बहुत बड़ा नाड़ी वैद था, जान था, नाड़ी हाथ में लेकर के बोला कि 15 दिन पहले इस लड़के ने सुखड़ी खाई है, क्या खाए, सुखड़ी हमारे बनाते गुड़ की, गुड़ आटा और घी डाल के बनाते हैं, जैसे वो पाक बनाते ना अपन सियाड़े में, और उस पर उसने पानी पिया है, एक गुड़ घी की सुखड़ी खाके उस पर पानी पिया है, फिर वो खेलने में दौड़ा है बहुत, ये सुखड़ी इसके आंतर में जम गई है, वो बहुत ताव आएगा 15 दिन 16 दिन तक, बाद में वो पक करके निकल जाएगा, वो मल है, मल जम गया है पक करके निकलेगा, इसके पहले निकलने वाला नहीं है। ऐसे वैद्य, ऐसे ज्ञानी भी सदगुरु भी वैद्य होते हैं। कोई कहेंगे कि हम तो शांति रखते हैं, कसाई नहीं करेंगे, तो उसकी नाड़ समझते हैं वो, तो वो क्या करता है उसके परिणाम को वो नहीं जानते, लेकिन गुरु तो बराबर जानते हैं कि कितने वो छल पकड़ता है, कितना मायाचार होता है, कितना क्या होता है, कैसे होता है, वो खुद को उनको पता नहीं है, दोस्त जिसको होता है उसको पता नहीं है, लेकिन श्री गुरु को तो उसको पता चल जाता है। यहां कहते हैं कि निष्क्रिय ऐसा अपना स्वरूप कैसा है, निष्क्रिय इति को अर्थ कि बंध के कारण भूत जो राग आदि क्रिया है उस रूप भी वो नहीं होता, और मोक्ष के कारण भूत जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्ध भावना रूप परिणाम है, उसको एक शब्द में शुद्ध भावना रूप परिणाम कहा है, उस रूप भी वह नहीं है और उस रूप भी वह नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्रिया ही नहीं है, मलिन क्रिया तो नहीं है लेकिन शुद्ध क्रिया भी पारिणामिक भाव में नहीं है, इसलिए ऐसा जानने में आता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं है। देखो, शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्येय रूप आश्रय रूप करने लायक है, लेकिन ध्यान की क्रिया इसमें नहीं है, ध्यान तो पर्याय रूप होता है, क्योंकि ध्यान विनश्वर है, ज्ञान विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक भाव शाश्वत होने से अविनश्वर है, वो विनश्वर नहीं है, क्योंकि ध्यान विनश्वर है और शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। श्री योगेंद्र देव ने भी कहा है, क्या श्री योगेंद्र देव ने भी यही कहा है कि नवी उपजई नवी मरई बंधुन मोख करे, जीव परमथे जोईया जिन मर ये उभनई, ये है परमात्म प्रकाश की गाथा है, ये परमात्म प्रकाश की 65 गाथा जो है वो ये गाथा है, अर्थात हे योगी परमार्थ से जीव उपजता भी नहीं, परमार्थ से जीव की उत्पत्ति नहीं होती, कोई नया जीव पैदा नहीं होता विश्व में, दूसरी गति में से दूसरी गति में आते हैं, हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है तो कोई नया जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई और जगह से कोई जीव इधर आ जगह इस जगह पे हमारे घर में आया, तो जीव कोई नया उत्पन्न होता नहीं है और मरता भी नहीं, हमारे घर में से कोई चला जाता है तो कोई मर नहीं गया, वो अभी भी है, वो जीव अभी भी है, जहां भी अपने सुकृत्य हो दुष्कृत्य हो जैसा भी कर्म किया हो, इसका भोग्य स्थान है विश्व में, तो वहां अपना कर्म का भगवता करने के लिए स्वयं चला जाता है, इसलिए कोई जीव जन्म नहीं पाता, कोई जीव मरता भी नहीं,
और बंध मोक्ष को भी करता नहीं, जीवन मरण तो नहीं करता, लेकिन परम पारिणामिक भाव बंध मोक्ष को भी नहीं करता। ऐसा अपना स्वरूप भावना में भाने योग्य है, देखिए ऐसा अपना स्वरूप है, बंध मोक्ष को नहीं करता। अपरिणामी जो सुगानी जी कहते थे, क्या अपरिणामी हूं, इस दृष्टि में पर्याय की कर्तृत्व बुद्धि खत्म हो जाती है, पर्याय होनी बंद नहीं होती है। क्या पदार्थ परिणमनशील होने से पदार्थ का परिणमन कभी बंद नहीं होता, एक समय के लिए भी, लेकिन पदार्थ जो है उसका परिणाम मैं करूं, मैं मेरा ये परिणाम करूं करूं करूं, ये जो कर्तृत्व है परिणाम का, वो तो परिणाम के साथ एकत्व कर लेता है, कर्ता भाव से एकत्व हो जाता है, वो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को ले आता है। उसको तोड़ने के लिए कहा कि जीव बंध मोक्ष को करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं, भाषा से तो ये कहे कि जीव बंध मोक्ष को नहीं करता क्या, और फिर अपने को जरूरत लगे वहां तो बात को छोड़ देने, वो न्याय नहीं है। बंध मोक्ष है कल्पना भाणे भाखे वाणी माही, ऐसा नहीं, ऐसे अपने असल असली स्वरूप को अवलंबन में लेना है कि मैं ऐसा हूं, इसके लिए ये बात है। ऐसा जिनवर कहते हैं, ये भगवान के नाम से पुकारा है, कहा है तो योगिंद्र देव आचार्य ने कहा है, बहुत जिसने योग सार लिखा है, बहुत अध्यात्म का सुंदर ग्रंथ है, बहुत अध्यात्म की ठोस बातें जिसमें लिखी हुई है, अभिप्राय जिनवर देव का भी यही है और हमारा अभिप्राय भी यही है, दोनों के माने में कोई फर्क होता नहीं है। और भी थोड़ी स्पष्टता का विषय कहेंगे आगे के पैराग्राफ में।